प्रसंग ये चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों को और गवों को यमुना जी के तट पर ले गए थे। यमुना के उस भाग में जहां बहुत जहरीला सांप कालिया निवास करता था और वहां एक हृदय में अर्थात एक तालाब में कालिया ने और उसके साथियों ने इतना विष भर दिया था कि वो सारा इलाका वहां का दूषित हो गया था। और जब ग्वाल बालों ने और गवों ने उस जल का स्पर्श किया तो तुरंत वो नीचे गिर पड़े। ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो उनके प्राण ही निकल गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो तुरंत केवल अपनी कृपा दृष्टि से गोविंद अनुग्रह ईक्षितम, केवल उनकी दृष्टि मात्र से उनको फिर से जीवित कर दिया। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि एक वर्षा, एक अमृत की धारा या अमृत की वर्षा के समान थी, अमृत वर्षण्या। और इस अमृत की वर्षा से भगवान श्री कृष्ण ने सारे ग्वाल वालों को जागृत कर दिया और ये साबित कर दिया कि वो योगेश्वरेश्वर हैं, योगियों के ईश्वरों के ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण का असली स्थान ये है। और आगे चल के जब भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी ने एक ही श्लोक में सारे कालिया दमन लीला का वर्णन किया तो परीक्षित महाराज इससे संतुष्ट नहीं थे, तो पूछने लगे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे विशाल असुर का वध किया या दमन किया, और ये ऐसे कैसे हुआ कि कालिया जो कि इतने लंबे समय से बहु युग आवसम, इतने लंबे समय तक जो इस कालिया, इस कालिंदी नदी में रहा करता था, उसे इतने जल्दी श्री कृष्ण ने कैसे भगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के नित्य लीलाओं का श्रवण करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस अमृत को प्राप्त करके थक जाएगा। जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है धीरे 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 उसके हृदय में कथा के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, शनै शनै होता है, एकदम से नहीं होता। क्योंकि जब हम भक्ति मार्ग में पहले आते हैं तो संसार के प्रति आकर्षण बहुत तीव्र रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं तो धीरे धीरे कथा सुनने के बाद में, नामोच्चारण करने के बाद में ये आकर्षण बढ़ने लगता है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवं तिरित कर्ण रसायन कथा तज्जोषनाद आश्व उपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगान, जब हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, मम वीर संविदो, कपिल देव बता रहे हैं तो मम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जब मेरे गुणगान का श्रवण कीर्तन होता है तो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा, धीरे धीरे से ये कथाएं जो है रुचिकर लगने लगती हैं, रसायन रसमय लगने लगती हैं धीरे धीरे से। इसका मतलब है कि हो सकता है कि जब हम शुरुआत करते हैं भक्ति की, हमारे नौसुखीय अवस्था में, हमें शायद इन कथाओं की रुचि हमें अनुभव नहीं हो पाए। जिस प्रकार से पीलिया का जो मरीज होता है जॉन्डिस का, उसे गन्ने का रस भी कड़वा लगता है, लेकिन गन्ने का रस ही उसके लिए एकमात्र औषधि है। अगर गन्ने का रस का पान करता रहेगा तो धीरे धीरे से गन्ने का रस का स्वाद उसे मिल जाएगा। उसी तरह से हालांकि जब हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं शुरुआत में शायद हमें नींद आने लगे या शरीर दर्द करना लगे, मन भटकने लगे, भूख लगे, मन विचलित हो जाए, लेकिन जैसे जैसे हम इस कृष्ण कथा को सुनते रहेंगे, अगर शरीर को मन को कष्ट भी हो, नींद भी आए, भूख भी लगे, प्यास भी लगे, शायद वक्ता अच्छा बोल रहा हो नहीं बोल रहा हो, वक्ता वो विद्वान है नहीं है, कोई बात नहीं, भाषा अच्छी तरह से बोल रहा हो नहीं बोल रहा हो, लेकिन ये शब्द ब्रह्म है। इसलिए ऐसे कथा का पान करने मात्र से ही धीरे धीरे से अच्छा लगने लगता है। भवंतिरित कर्ण रसायन कथा, और इसके बाद में जोशनाद आश्व अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग अर्थात मुक्ति के मार्ग में वो चलने लगता है। जोशनाद आशु, आशु बहुत ही जल्दी प्रगति करता है, और फिर श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, फिर क्रम से श्रद्धा जागृत होती है हृदय में, फिर धीरे 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 से भक्ति और रति, रति मतलब भक्ति का एक बहुत तीव्र रूप है, तीव्र आकर्षण, इसको रति कहते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण कथा श्रवण करने का लाभ ये है। तो परीक्षित महाराज जी अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से ही जन्म के पहले से ही वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और ऐसे वैष्णवों के कुटुंब में परीक्षित महाराज को जन्म लिया था। उनके पिता अभिमन्यु थे, उनके पिता के पिता अर्जुन थे, जो भगवान श्री कृष्ण के खास सखा और मित्र। तो ऐसे वंश में जो पैदा हुए हैं परीक्षित महाराज, जिन्होंने मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया है, तो स्वाभाविक है कि उनको ऐसे रति कृष्ण और कृष्ण कथा के प्रति होगी। तो परीक्षित महाराज अचानक से जब उनको मृत्यु की सजा मिल गई या मृत्यु का शाप मिल गया, तो आ गए गंगा जी के किनारे। वास्तव में जीव गोस्वामी बताते हैं कि जमुना जी के किनारे आए थे, तो वहां बैठे थे। तो कैसे हुआ कि अचानक 7 दिन लगातार वो बैठ पाए, बिना खाए बिना पिए बिना सोए, अचानक नहीं हुआ। जीवन भर उन्होंने अभ्यास किया इसका, नहीं तो कैसे हो सकता है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो अचानक आकर 7 दिन लगातार कृष्ण कथा सुन सके और उसे प्यास और भूख भी पीड़ित न करे। हम देखते हैं जब पहली बार हम मंदिर में आते हैं और लंबा प्रवचन हो कीर्तन हो, बैठ नहीं सकते, मन स्थिर नहीं हो सकता, रुचि नहीं आती। कृष्ण कथा के लिए बैठना तो बहुत सरल काम है, लेकिन फिर भी बहुत कठिन काम है बैठना। उसमें कौन सी मुश्किल की बात है, टेलीविजन के सामने कितने लोग घंटे घंटे बैठे रहते हैं। बैठना ये कठिन काम नहीं है, शरीर में कष्ट हो भी तो थोड़ा इधर उधर बैठ सकते हैं, लेकिन कृष्ण कथा सुनना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे भीतर जो अनर्थ हैं हमें सुनने नहीं देते हैं, अड़चन पैदा करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने अभ्यास किया था जीवन भर, क्योंकि बचपन से ही आकर्षण था, बचपन से ही जन्म मां के गर्भ से बाहर आते ही परीक्षा कर रहे थे, भगवान कहां है भगवान कहां है, वो व्यक्ति कहां है जिनका दर्शन मैंने मां के गर्भ में किया था। तो जीवन भर ऐसे ही इधर उधर कृष्ण कथा सुनते देखते रहे, इसलिए वो कर पाए, इसलिए ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, इतनी आतुरता वो प्रकट कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण, कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने कि एक बार कृष्ण कथा का श्रवण किया और उसे उसमें स्वाद नहीं लगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण कथा सुनकर थक जाए। मतलब शुद्ध भक्त को आश्चर्य ये बात की होती है कि ये कैसे संभव है कि किसी को कृष्ण में और कृष्ण कथा में आकर्षण नहीं हो। नौसुख्य अवस्था में या अभक्त की अवस्था में समस्या ये रहती है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण कैसे हो, कृष्ण का स्मरण कैसे हो। जाप करते समय भी कितना कष्ट होता है, मन भटक जाता है, भगवान के नाम के ऊपर मन केंद्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त की समस्या, जैसे परीक्षित महाराज, उनकी समस्या दूसरी है। कैसे यह संभव है कि किसी को आकर्षण पैदा नहीं होता है। इसका मतलब है कि स्वाभाविक तौर से कृष्ण कथा बहुत रुचिकर है, रसमय है, रस से भरा हुआ है। केवल हमें छिलके को निकालना है और फिर इसका पान करना है। श्रवण पुटेषु संवृतम कथामृतम, इस कथा के अमृत का श्रवण पुटेषु संवृतम, कानों कानों में भर के इसको हमें श्रवण करना चाहिए। तो फिर आगे शुकदेव गोस्वामी को थोड़ी प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है कि जब श्रोता, जब वक्ता इतने ध्यान से सुनने के इच्छुक हैं और इतने आतुर हैं सुनने के लिए, तो फिर वक्ता भी बोलने के लिए थोड़े उत्सुक हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलने लगे, कालिंद्याम कालयस्यासीत् हृदय कश्चित् विषाग्निना शप्यमान पयायस्मिन् पतन्त्युपरिगः खगाः। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कालिंद्याम कालयस्यासीत् हृदय, एक कालिंदी नदी में एक हृदय, एक तालाब था जिसमें कालिया आसीत, जहां वो रहता था। तो ये जो तालाब है हृदय, ये थोड़े हट कर था जमुना जी के मुख्य प्रवाह से। जीव गोस्वामी पाद समझाते हैं कि अगर ये हटकर कोई तालाब नहीं हुआ करता, अगर जिस स्थान में कालिया निवास कर रहा था वो अगर मुख्य यमुना नदी में था हुआ करता, तो फिर नीचे सारे जो शहर थे जैसे मथुरा इत्यादि सारे दूषित हो जाते। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, इस तालाब का प्रवाह जो है वो अलग से चल रहा था और यमुना जी का प्रवाह जो है वो अलग तरह से चल रहा था, इसलिए बिल्कुल अलग होकर यहां कालिया आराम से निवास कर रहा था। कालिया ने यमुना नदी का या इस तालाब का इस तरह से आश्रय लिया था जैसे कोई व्यक्ति बरसात के समय एक बड़े छतरी का। बरसात में हम पीड़ित हो जाते हैं, गीले गीले कपड़े हो जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, लेकिन छतरी के नीचे आ जाते हैं तो बिल्कुल हम अशांत हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से गरुड़ जी के भय से यहां पर कालिया इस स्थान में आकर छुप गए थे, और क्योंकि सौभर मुनि के शाप से जो कि गरुड़ जी के ऊपर था उससे सुरक्षित थे, तो कालिया निर्भय होकर वहां पर जी रहे थे। श्री राजीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वो इस हृद का वर्णन करते हैं। ये तालाब जो है बहुत छोटा तालाब नहीं था, एक योजन चौड़ा था, कई जगहों पर एक योजन अर्थात 8 मील, और इतना विशाल था कि देवी देवतागण की भी कभी कभी उसको पार नहीं कर सकते थे, और बहुत गहरा था, और इसका जल इतना गहरा होते हुए इतना पानी था इसमें, सागर के समान प्रतीत हो रहा था और कभी विचलित नहीं होता था ये, और इसके अंदर इतने सारे सांप भी रहते थे और बाहर भी सांप रहते थे। तो इसके तट पर काफी लंबे जगह तक वहां खड्डे हुआ करते थे, इन खड्डों में कई जहरीले सांप रहा करते थे, इसलिए इस तालाब के निकट भी आना बहुत कठिन हो गया था। और इस प्रकार से ऐसे तालाब में ये कालिया निवास कर रहा था, और यहां पर अगर कोई घास का तिनका भी अगर हवा के झोंके से आके गिर पड़े तुरंत वो भस्म हो जाता था, इतनी गर्मी और इतना विष था इस हृदय में। शप्यमाण पया यस्मिन पतंती उपरि गाह खगाह, इतना विष इसमें था पया शप्यमाण कि ऐसे लग रहा था कि यमुना जी का जल सतत खौल रहा है, उबल रहा है उस विष के मारे। कालिया जो वहां निवास करता था उसके आंखों से और नसिकों से ये विष निकलता था। कल हम चर्चा कर चुके थे कि कालिया और उसके साथी, उसके अनेक रानियां थीं, बच्चे थे, साथी थे, ये महातल से यहां पर आए थे। महातल में वो नागलोक है, कहां वहां बहुत सारे ऐसे जहरीले सांप रहते हैं, बड़े बड़े सांप जिनके एक फण, दो फण, 10 फण, 100 फण, 1000 फण, ऐसे विशाल सर्प रहते हैं, और ये यहां पर आए थे। उनके फणों में मणियां रहती हैं जिनके प्रकाश से वो अंधकार को दूर कर सकते हैं। महातल में सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है, इसलिए केवल मणियों की रोशनी से वो सब कुछ देख पाते हैं, और इस प्रकार से विष बार बार निकलता रहता उनके नसिकों से, और इस प्रकार से यमुना जी का जल खौलता रहता, उबलता रहता। और कवि कर्णपुर बताते हैं कि यमुना जी को ऐसे लगा कि मानो उनके पेट के भीतर एक अग्नि का कोई गेंद है, जल रहा है प्रज्वलित रूप से। और इस प्रकार से यमुना देवी भी बड़ी विचलित रहती हैं। यमुना जी में कालिया और उनके साथियों के अलावा कोई भी रह नहीं सकता था। और ये विष इतना भयंकर था, उस विष के बाफ जो है पानी के जो ऊपर उड़ते थे, वो ऊपर जो आ जाता था, उसके प्रभाव से ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी हैं वो भी गिर पड़ते थे और मर जाते थे। पतंती ऊपरी गाह खगाह, खगाह खगाह मतलब पक्षी, ख खम या खे मतलब आकाश, भूमिरा पुनर्वायु खम मनोबुद्धिरेव च। तो ये पंच महाभूतों में से जो सबसे आखिरी है, पांचवा सबसे सूक्ष्म, वो है खम आकाश। शब्द खे पौरुषम ऋषु, गीता में भगवान बताते हैं कि खम में आकाश में मैं शब्द हूं। तो खम ख गाह गमन करने वाला, तो आकाश में गमन करने वाले अर्थात पक्षी जो हवा में उड़ते हैं। ऊपरी गाह जो ऊपर उड़ रहे थे, पतंती इसके खोलते हुए वाफ से क्या होता था कि पक्षियां भी गिर जाती थी। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना जहरीला, कितना भयंकर भीषण यमुना का जल हो गया था। और इतना ही नहीं, जब हवा उस कालिया रथ के ऊपर से बहता था तो पानी के उस खोलते हुए उबलते हुए पानी के थोड़े बूंद ऊपर आया करते थे, तो हवा ये बूंद को लेकर उड़ जाती थी। और फिर उस ये सारे बूंद पानी के जो कि विस्मय हो चुके थे, वो जब भूमि पर गिर जाते तो वहां के जो भी चर अचर प्राणी वहां हुआ करते थे सब मर जाते थे। चर मतलब जैसे कि कीड़े हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, और अचर जैसे कि पेड़ पौधे वृक्ष इत्यादि। तो काल्य हृदय के कई मील तक वहां कोई चर अचर प्राणी जीवित नहीं रह पाता था। तो अपने मन में कल्पना कीजिए कि किस प्रकार के एक अवस्था कालिया ने और उनके साथियों ने वहां पर पैदा कर दिया था। और फिर आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण वहां पहुंचे, उन्होंने ये दशा देख ली, और फिर कृष्ण भगवान ने क्या देखा और क्या किया। ये छठा श्लोक है। तम चंड वेग विषवीर्यम वेक्षते न दुष्टाम नदीं च खल संयन अवतारः कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोति तुंगम् आस्फोट्य गाढरशनोऽन्यपतद्विशोदे कृष्ण ने देखा कि कालिया नाग ने किस तरह अपने अत्यंत प्रबल विष से यमुना नदी को दूषित कर रखा था। क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक जगत से ईर्ष्यालु असुरों का दमन करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित हुए थे, इसलिए वे तुरंत एक बहुत ऊंचे कदम्ब वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए और उन्होंने युद्ध के लिए अपने को तैयार कर लिया। उन्होंने अपना फेंटा बांधा, बाहुओं में ताल दी और अब विषैले जल में कूद पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण कालिया रद के तट पर पहुंचे, आवेक्ष तेन उन्होंने देखा, क्या देखा, दुष्टाम नदीन, जो नदी यमुना जी दूषित हो गई है। किस वजह से, तम चंड वेग विष वीर्यम, वो विष है किसके उत्पन्न किया हुआ, जो बहुत जबर जो बहुत जबरदस्ती से शक्तिशाली जो कालिया है उसका विष उसमें भरा हुआ था। और ये जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो अपने मन ही मन में विचार करने लगे कि मैं तो यहां आध्यात्मिक जगत से प्रकट हुआ हूं, मैंने अवतार लिया है। क्यों अवतार लिया है? खल संयमना, खल मतलब असुर, खलों का संयम करने के लिए, असुरों का दमन करने के लिए मैंने यह अवतार लिया है। कृष्ण अपने मन ही मन में सोच रहे हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करना भगवान के अवतार लेने का एक कारण अवश्य है। तो उन्होंने सोचा कि ये कालिया ने इतना उत्पात यहां कर दिया है, सारे ब्रज को दूषित कर दिया है, अभी इसका दमन करना आवश्यक है मेरे लिए, मैंने इसीलिए तो अवतार लिया है। तो सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण कदम्बम आदिरुह्य ततो अति तुंगम। तो कृष्ण भगवान एक बहुत ही ऊंचे, अति तुंगम, तुंग मतलब ऊंचा, अति तुंगम बहुत ही ऊंचे एक कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़े, आरुह्य। अति तुंगम कवि कर्णपुर बताते हैं कि कदम्ब वृक्ष इतना ऊंचा था कि मानो वो आकाश को चुंबन कर रहा है और बादलों से स्पर्श कर रहा है। और ऐसे कदम्ब वृक्ष के ऊपर श्री कृष्ण आसानी से चढ़े। कदम्ब वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, ब्रजमंडल में ज्यादातर पाया जाता है, ब्रज के बाहर बहुत कम दिखने में आता है कदम्ब वृक्ष। इसके गोल पीले रंग के फूल होते हैं, बहुत सुंदर। और कृष्ण भगवान की लीला से यह कदम्ब वृक्ष जुड़ा हुआ है ब्रज में, इसलिए कृष्ण इसे तमाल कृष्ण भी कहते हैं। और ये कदम्ब वृक्ष वहां कालिया ह्रद के तट पर था। तो प्रश्न ये आ सकता है कि जब पिछले ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि कई मीलों की दूरी तक चर अचर प्राणी सब वहां मर चुके थे, तो यहां पर ये कदम्ब वृक्ष ये कैसे जीवित रह गया? तो आचार्यगण समझाते हैं कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने चरण कमलों से उस कदम्ब वृक्ष का स्पर्श किया तो तुरंत वो जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण जब अपने दृष्टि मात्र से हजारों ग्वालबालों को, गवों को पुनः जीवित कर सकते हैं, तो अपने स्पर्श से एक वृक्ष को क्यों नहीं जीवित कर सकते? उनके लिए कोई कठिनाई की बात तो नहीं है। और आचार्य भी समझाते हैं पुराणों से पुष्टि करते हुए कि एक बार बहुत साल पहले गरुड़ जी वहां आए थे और उस समय उन्होंने जान लिया था कि आगे बहुत सालों बाद में कृष्ण भगवान यहां आकर लीला करेंगे, कालिया दमन करेंगे, इस वृक्ष के ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला के लिए ये वृक्ष यहां रहना आवश्यक है। तो गरुड़ जी ने उस वृक्ष के अंदर अमृत भर दिया था जिससे कि कालिया के विष से वो बच गया और उसको कुछ हुआ नहीं। तो इस प्रकार से एक कदम वृक्ष वहां जीवित था और आज भी है। आप में से जो वृंदावन गए हैं, आप अवश्य वृंदावन के परिक्रमा के पथ में कालिया घाट में गए होंगे। कालिया घाट में यह कदम वृक्ष अभी भी है। कहा जाता है कि वह वही वृक्ष है जो जिसके ऊपर 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण चढ़े थे। लेकिन यमुना जी अब वहां बहती नहीं है, यमुना जी का प्रवाह अभी बदल गया है। आप जानते हैं कि नदी अपने रास्ते बदलते रहते हैं, तो यमुना जी का रास्ता भी अभी बदल गया है, परंतु वह कदम वृक्ष अभी तक वहीं पर है। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर ऊपर चढ़े। भक्ति रत्नाकर में बताया जाता है कि जो व्यक्ति कालिया घाट में जाकर वहां यमुना जी में स्नान करता है सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और अपने व्यवसाय में भी सफल हो जाएगा। ये कभी कभी ऐसे क्यों करते हैं भक्त लोग, ऐसे क्यों बताते हैं? ताकि लोगों को थोड़ा आकर्षण हो जाए जाने के लिए। चलो व्यवसाय में थोड़ी समस्या है तो जाते हैं, थोड़ा कुछ लाभ ले लेते हैं, उससे ब्रज में जाने का लाभ तो हो जाएगा। लेकिन यमुना जी में स्नान करने का, ब्रज में जाने का असली लाभ तो ये है कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति हम आकर्षण जागृत करना चाहते हैं, अपना शुद्धिकरण करके भक्त होना चाहते हैं। तो खैर श्री कृष्ण ऊपर चढ़ गए अधिरोहिया, और चढ़कर क्या करने लगे, युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। कृष्ण की इच्छा थी कि अभी मैं युद्ध करूं, उनके हृदय में कोई भय नहीं था। सर्वशक्तिमान है श्री कृष्ण, किसका भला भय हो सकता है उनको। और उन्होंने सोचा कि अभी काल्य के अहंकार को चूर चूर करना चाहिए। और जब ऊपर खड़े थे, बड़े सुंदर दिख रहे थे, उस कदम वृक्ष के ऊपर ऊंचे शिखर पर खड़े हुए थे, उनका सुंदर कोमल शरीर, श्री कृष्ण का पतला कमर, क्योंकि अभी तक बहुत छोटे थे ना, पौगंड अवस्था में जस्ट केवल प्रवेश कर चुके थे, छठे साल में थे अपने। और ऊपर खड़े होकर कृष्ण भगवान ने क्या किया, आस्फोट्य, अपने भुजाओं का स्फोटन किया, जैसे कि पहलवान करते हैं कुश्ती में मैदान में प्रवेश करने के पहले। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा ग्वाल बाल मित्रों के संग भी ऐसा किया करते थे। कभी कभार जब ग्वाल बाल भी उनसे युद्ध करते थे, कुश्ती करते थे, तो दोनों कुश्ती करने के पहले दोनों अपने भुजाएं का स्फोटन करते थे, दिखाने के लिए कि खबरदार मैं आ रहा हूं, मैदान में उतर रहा हूं, मेरे से युद्ध कर रहे हो, कृष्ण देखो संभल के रहना, हम कोई साधारण नहीं है, तुम्हें कौन बड़ो लोग, तुम्हें आम स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते चैतन्य चरितामृत में। ग्वालबाल ललकारते थे युद्ध में कृष्ण को, तुम कौन से बड़े आदमी हो, एक दो असुरों को मार लिया, अगासुर को मार लिया, तो क्या बड़े आदमी हो गए क्या, हम भी कोई कम है क्या, हम तो कोई कम नहीं है, तो आओ हमसे अभी निपटाओ, मैदान में चलो। और कभी कभी कृष्ण हार भी जाते थे और फिर उनको दंड मिलता था, और फिर कभी कभी उनको अपने कंधों पे ग्वाल बालों को बिठाकर ले जाना पड़ता था। और ऐसे लीला भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो इस प्रकार से बचपन में भी करते थे भगवान, जब कोई उनकी गोपियां या नंद बाबा यशोदा माता उनको बोलती थी, अरे कृष्ण वो जरा लेकर आना, मेरे पादुका लेकर आना, वो सामान लेकर आना, कभी कभार कृष्ण उठा सकते थे। लेकिन कभी कभार क्या होता था कि वो वजन, उस वस्तु का वजन इतना भारी होता था कि वो उठा नहीं पाते, तो उस समय क्या करते, उधर खड़े रहकर कोशिश करते उठाने के लिए, सामान उठता नहीं तो वहां ऐसे देखते कि कोई देख तो नहीं रहा है, सब लोग देख रहे होते तो उनको लगता कि ये लोग सोचेंगे कि मेरे में शक्ति नहीं है उठाने की, तो वे क्या करते, अपने भुजाओं का स्फोटन करते, शक्ति है मुझे में बहुत, ऐसा नहीं सोचो कि मुझ में शक्ति नहीं है। तो फिर ऐसे लीला देखकर ब्रजवासी जो है वो आनंद के सागर में झूमने लगते, डूब जाते। ये है भगवान श्री कृष्ण की लीला। वो परम शक्तिमान व्यक्ति आज यहां एक साधारण से वस्तु उठा नहीं पा रहे हैं, जिनके अंश के अंश के अंश से अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके फणों पे स्थित है, जो केवल सरसों के बीज के समान उनको प्रतीत होता है, इतने भारी भारी वजन वो धारण करते हैं, लेकिन ब्रज में आकर एक छोटे से पादुका या छोटा सा वजन वो उठाने में समर्थ नहीं है। ये है कृष्ण भगवान। जब कृष्ण को समझेंगे तो कृष्ण की लीला समझ पाएंगे। कृष्ण को समझे बिना कृष्ण की लीला को समझने जाएंगे तो निश्चित रूप से हम भ्रमित हो पाएंगे। और जैसे इस प्रकार से भुजाओं का स्फोटन करते हुए कृष्ण वहां खड़े थे, तो हसमुख चेहरे से अपने मित्रों की ओर देखे और उनके आंखें भी चमक रही थीं, उनके मोती जैसे दांत भी, सुंदर दांत भी चमक रहे थे, और ऐसे बड़े करुणा की दृष्टि से उन्होंने अपने मित्रों की ओर देखा और कहने लगे, चिंतित नहीं होना, मैं बहुत ही जल्दी इस सांप का दमन करूंगा, देखो तो सही मैं कैसे चमत्कार करता हूं। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने उतरिया को उतारा, उतरिया मतलब जो ऊपर कपड़ा पहनते थे, उसको अपने कमर में बांध दिया एक पट्टे के समान, गांठ बांध दी, गांठ ऐसे लगता था मानो कोई सांप है जिसका बड़ा फण है, सर है। तो कृष्ण भगवान की तस्वीर आपने देखी होगी, तो उनके सामने पट्टा रहता है और पट्टा के सामने जो जहां गांठ होती है वो एक सांप के सर के बराबर लगता है। और फिर अपने बालों को बांध दिया, क्योंकि लंबे बाल थे तो बालों को बांध दिया, और साथ साथ में अपनी और भी तैयारी करने लगे। अपने पगड़ी को फिर से अच्छी तरह से बांध दिया और ऐसे तैयारी करने लगे युद्ध के लिए। और कृष्ण तैयार हुए और फिर क्या किया, न्यपतत विशोदे, फिर छलांग मार दी। और इस प्रकार से छलांग मारी जल के भीतर, जैसे कि कई बार कई प्रकार के पक्षी जो होते हैं वो अंदर जाते हैं जल के एक मछली को पकड़ने के लिए। आपको मालूम होगा किंगफिशर, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, किंगफिशर नाम का एक पक्षी होता है। वो जल में जब देखता है कि कोई मछली है, वृक्ष के ऊपर बैठा होता है और फिर जल्दी से तेजी से नीचे जाता है जल में, अपनी चोंच को डाल के उस मछली को उठाकर फिर से उड़ जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ऐसे, उन्होंने ऐसे छलांग लगाया मालो कि वो एक साधारण मछली को पकड़ने जा रहे हैं, उसका अभी अभी उसका अंत करने जा रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान ने इसमें कालिया हृदय में कूद छलांग लगाई। और जब छलांग लगाई, हाथ को मुट्ठी कर दिया, तो आगे क्या हुआ यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं।
सर्पहृद पुरुष सारन्निपात वेग संक्षोभितो रगविचोश्वताम्बुराशिः पर्यक्लुतो विषकषाय बिभाषणोर्मेर धावन धनुष्यतमनंत बलस्य किंतत्। सर्पहृदय पुरुष सार निपात वेग, इस सर्पहृदय में, कालिया के हृदय में श्री कृष्ण पुरुष सार, पुरुष सार मतलब सर्वोत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, निपात वेग, निपात मतलब गिरे, लेकिन वेग से गिरे, हल्के ढंग से गिरे नहीं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो है और लड़के ऊपर से छलांग मारना जल में पसंद करते हैं। आप में से जो ब्रज यात्रा में गए होंगे आपने देखा होगा कुसुम सरोवर में, गोवर्धन की परिक्रमा में कुसुम सरोवर के ऊपर एक राजपूत राजा ने कई साल पहले कई ऐसे घाट वगैरह बनाए थे और कुसुम सरोवर के काफी ऊंचे हैं। तो ब्रज के लड़के जो हैं वो ऐसा पसंद करते हैं कि वहां जाकर छलांग मारते हैं पानी में, और ऊपर से कई अपने जंघों को पकड़ के कोई ऐसे उल्टे कूदते हैं, कोई डाइव मारते हैं, और जितना पानी छिड़क सकते हैं उतना उनको मजा आता है, और नीचे कूदकर फिर से ऊपर आते हैं, फिर से कूद देते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेग से जल में कूदने का प्रयास करते हैं, उसमें उनको आनंद आता है। तो वो भी परंपरा है, कृष्ण ने परंपरा शुरू की थी ब्रज में। तो कृष्ण भी जब छलांग मार चुके तो इतने वेग से उन्होंने प्रविष्ट हुए जल में कि मानो ऐसे लग रहा था कि वो सीधे पाताल लोक में प्रवेश करने वाले हैं जल के भीतर से, इतने तेजी से, इतने गति से, प्रवाह से वो कूद पड़े। इसलिए निपात वेग, हालांकि वो थे केवल एक कोमल 5 साल के बालक, लेकिन है तो सर्वशक्तिमान भगवान, इसे बड़े वेग से अंदर कूद पड़े। और वहां क्या असर हुआ, संक्षोभित उरग, उरग मतलब सांप, तो वहां के सांप जो है बड़े उत्तेजित और विचलित हो गए, संक्षोभित, और उनके उचले विचलित होने के मारे क्या हो गया, विष उच्छ्वसित, जो अपने सांस से उच्छ्वसित विष निकलने लगा। पहले से ही इनके मुख से, उनके नसिकों से विष निकल रहा था, और जब ये उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए, तो भर भर के और विष निकलने लगा, तो सारा जो तालाब है विष से और भी भर गया, पानी और भी खौलने लगा। और ये सारा विष जो है कृष्ण भगवान के कूदने के तत्पश्चात जो उर्मी या जो तरंग आए उस तरंग के ऊपर फेड़ बन के ये विष जो है ऊपर चढ़ गए। इसलिए यहां सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अम्बुराश ही पर्यकृतो विष कषाय, बाढ़ आ गया और पानी बहुत लंबे सीमा तक बाहर उड़ गया, पानी केवल कृष्ण के अंदर जाने की वजह से। धावन धनुषताम, 100 धनुष की लंबाई पर, मतलब करीब करीब समझ लीजिए 350-400 फुट की लंबाई तक पानी फैल गया। पानी के जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वो वहां पर गई। तो सोचिए कृष्ण भगवान ने कितने वेग से कूदा होगा कि 400 फुट जो है सारे कालिया रथ के इर्द गिर्द पानी फैल गया, ऊंचे ऊंचे तरंगे, और उन तरंगों के ऊपर ये जहरीला जो ये विष है वो ऊपर फेड़ के बराबर, फेम के समान स्थित था। बड़े काव्यात्मक ढंग से आचार्यों ने वर्णन किया है। और जब ग्वाल बाल और गायों ने देखा कि इतने ऊंचे ऊंचे तरंग आ रहे हैं तो तुरंत वहां से भाग पड़े दूर। और इस प्रकार से कालिया ने भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे छलांग मारकर इतना उत्पात पैदा कर दिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अनंत बल से किम तत्, उनका तो अनंत बल है, उनको ऐसे उत्पात करना, इतनी वेग से कूद मारना या इतने ऊंचे ऊंचे तरंगे पैदा करना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनका नाम है अनंत बल, जिनका बल अनंत है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने छलांग मार दी, और छलांग मारने के बाद उन्होंने क्या किया, तस्य हृदय विहरतो भुज दंड घूर्ण वार्घोषमंग वरवारण विक्रमस्य आश्रित्य तत्स्व सदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुश्रवः समसरत् तत् अमृष्यमाणः। तस्य हृदय विहरतो, उसके बाद में उस हृदय में, उस तालाब में श्री कृष्ण विहार करने लगे। लेकिन कैसे विहार करने लगे, वरवारण विक्रमस्य, जैसे एक पागल मतवाला हाथी। कभी आपने मतवाले हाथी को पानी में विहार करते हुए देखा है, हलचल पैदा कर देता है माटी में, तालाब में, जल में। हाथियों के हाथी झुंड के झुंड जाते हैं, जैसे आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा में भागवत में पढ़ा होगा। जब हाथी प्रवेश करते हैं, जंगल से गुजरते हैं, तो शेर सिंह भी इधर उधर हो जाते हैं, इधर तिधर बिखर जाते हैं, क्योंकि हाथी जब चलते हैं तो आगे पीछे देखते नहीं है। रास्ते में कोई पेड़ आए, कुछ भी आए, उसको बिल्कुल कुचलाकर उखाड़कर चले जाते हैं। ये हाथियों की शक्ति होती है। और खास करके हाथी जब उन्मत्त अवस्था में होते हैं तो फिर उसकी बात ही क्या है। इसलिए युद्ध में जब हाथियों का प्रयोग किया जाता था तो उनको मादक पदार्थ का सेवन कराया जाता था। फिर जब वो मतवाले अवस्था में आ जाते थे तब ऐसा युद्ध करते थे कि हजारों सैनिकों को कुचला डालते थे वो। तो इस प्रकार से एक मतवाले हाथी की तरह कृष्ण भगवान वहां पर विहार करने लगे जल के भीतर। अभी थे कृष्ण 5 साल के, छठे साल में प्रवेश कर चुके थे, तो कैसे ये संभव है कि एक मतवाले हाथी की तरह वो वहां विहार करने लगे। कृष्ण के लिए कठिन नहीं है, अनंत बल। तो फिर यहां सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, भुज दंड घूर्ण वार घोषम, भुज दंड अपने भुजाओं से पानी को आंदोलित करने लगे। भुजाएं तो थे छोटी, नन्हे नन्हे से थे, छोटी भुजाएं थी, लेकिन ऐसे जल का आंदोलित करने लगे मानो कि जल के अंदर एक विराट पर्वत ही गिर चुका है। एक पर्वत अगर पानी में गिर जाता तो किस प्रकार से जल आंदोलित हो जाता, किस प्रकार से उत्पाद पैदा हो जाता, किस प्रकार से ऊंची ऊंची तरंगे उत्पन्न होती। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भुज दंड घूर्णा अपने भुजाओं को घुमाते रहे, छिड़कते रहे पानी, और गोल गोल घूमते रहे उस जल में विहार करने लगे। और उसकी वजह से कालिया को अंदर ऐसे लगा कि क्या हो गया, कहीं पहाड़ तो नहीं गिर गया अंदर। कालिया ने भी अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि ये जो उत्पात पैदा हो गया, ये कोलाहल जो मच गया है यहां पर, हलचल जो मच गया है, ये एक 5 साल के कोमल बालक के भुजाओं के जल के आंदोलित करने से हो सकता है। कालिया शांति से रमण कर रहा था नीचे जल के भीतर गहराई में, और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर कालिया को उकसाने का प्रयत्न किया और सफल हुए भी। और उस प्रकार से हलचल जब कोलाहल मच गया सारे वहां पर, और आवाज ऐसी आ रही थी प्रचंड आवाज बादल के गरजने से भी अधिक, जानबूझकर कृष्ण भगवान वहां हल्ला कर रहे थे, ऐसे जल के जल से को पीट रहे थे कि भीषण आवाज आ रही थी। लेकिन इतनी भीषण आवाज आने के बाद भी आचार्य समझाते हैं कि ये आवाज बिल्कुल संगीतमय थी, ऐसा लग रहा था कि कोई संगीत निकल आ रहा है। जैसे कभी कभी हम रेलगाड़ी में सफर करते हैं, सोते सोते रेलगाड़ी की आवाज, उसमें भी एक प्रकार का ताल होता है, गड़गड़ एक आवाज आता है, तो उसमें भी एक ताल आता है। तो एक साधारण से संसारिक जगत में रहते हुए आवाज में ऐसे एक ताल आता है, तो भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे करते हैं तो उसमें क्यों नहीं आ सकता। तो जब जल को पीट रहे थे, घूम घूम कर छिड़क रहे थे जल को, पीटते जा रहे थे जल को यूं, तो ऐसे लग रहा था कि संगीत कुछ है। लेकिन कालिया और उनके साप मित्रों की क्या अवस्था हुई, शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। आश्रुत्य सुना कालिया ने, कैसे सुना, चक्षुश्रवाह, वैसे जो सांप होते हैं ना उनके कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकते हैं कानों से, केवल देखते हैं, इसलिए उनको चक्षुश्रवाह बताया जाता है, जो अपने चक्षु से श्रवण करते हैं, अर्थात वो केवल देख सकते हैं। चक्षुश्रवक का मतलब है कि वो अपने आंखों से देख रहे थे, जो भी ज्ञान उनको प्राप्त होता है अपने आंखों से या अपनी त्वचा से। तो कालिया ने देखा, कालिया ने सुना, आश्रुत्य, क्या देखा क्या समझा, पहले तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कालिया, भ्रांति में पड़ गया, अरे क्या हो रहा, पहाड़ गिरा, क्या हो गया मेरे घर में। जैसे कि मान लो अचानक आपके घर में बीच रात में कोई बड़े जोर से दरवाजे पे पत्थर फेंकने लगे, आपके कांच तोड़ने लगे, आप तो उठ जाए, अरे क्या हो रहा है, अचानक नींद में से जाग गए आप, क्या हो रहा है। फिर कालिया ने देखा, तत्स्व सदन अभिभवम, स्व सदन के ऊपर अभिभवम या अतिक्रमण हो रहा है, ये निष्कर्ष पे पहुंच गए कालिया। ये केवल थोड़े चंद क्षणों की बात है, चंद क्षणों में ही श्री कृष्ण ने ऐसा हलचल कोलाहल मचा दिया था उस जल में कि काले और सारे उनके जो साथी थे बड़े उत्तेजित हो गए, विष ज्यादा से ज्यादा निकलने लगा, और कालिया ने फिर समझ लिया कि मेरे सदन के ऊपर, मेरे भवन के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। कालिया का सदन, स्वसदन कैसा था, बहुत सुंदर था, मणियों से रत्नों से बना हुआ था, जल के भीतर नीचे। सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं कि कालिया हालांकि एक नाग था, लेकिन पृथ्वी लोक का नाग नहीं था ना, महातल का नाग था, इसलिए सारे योग सिद्धियों में प्रवीण था, और जलस्तंभ नाम की विद्या को वो अच्छी तरह से जानता था। ये जलस्तंभ विद्या क्या है, जिससे योगी जल से भी वो कोई वस्तुएं बना सकता है, जल का घर बना सकता है, जैसे हम ईंट का बनाते हैं वो जल को एक करके बना सकता है, सॉलिड वस्तु। क्या हम जल को, जल से हम घर बना सकते हैं, नहीं होगा। लेकिन कालिया इस विज्ञान को जानता था, और जल के भीतर, जल से उसने अपने आप के लिए, अपने रानियों के लिए, बच्चों के लिए सुंदर महल बनाया, और फिर ये महल में सारे अनेक नाना प्रकार के रत्न इत्यादि थे। कालिया के कई पत्नियां थे, रानियां थी, और कई बच्चे थे उनके साथ में, वहां रहते थे। अब सांप का स्वभाव होता है कि वो हमेशा क्रोधित रहता है और हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता है। जब सांप किसी आदमी को देखता है, अपने पथ में आया है, बिना कोई वजह से, बिना कारण के डस देता है, यह है सांप का स्वभाव, फिजूल के ऐसे यूं ही किसी को, फली हो जाता है कोई मनुष्य, तो उसकी तुलना सांप से की जाती है कि बिना वजह जाकर दूसरों को कष्ट देना, बिना वजह से दूसरों से द्वेष करना, ये सांप का स्वभाव हो जाता है। तो इसलिए हमें भी सोचना चाहिए कि हम भी अगर किसी को बिना वजह कष्ट दे रहे हैं, हम भी किसी से द्वेष कर रहे हैं, तो उस हद तक हमारे भीतर कालिया का प्रभाव है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस द्वेष को मुक्त करने के लिए फिर हमारे हृदय में कूद कर उत्पात पैदा करेंगे। तो अगर हमें उत्पात नहीं चाहिए तो जल्दी से जल्दी इस द्वेष रूपी जहर को हमें त्याग देना चाहिए। तो उस प्रकार से कालिया ने देखा, पहले ही गुस्से होते थे, गुस्से में विष निकालते थे, जब गुस्सा बढ़ गया तो इतना गुस्सा आ गया कि असहनीय हो गया कालिया के लिए। कालिया को लग रहा था कि ये जो ऊपर हलचल मच रहा है, इतना वेग, इतनी तकलीफ हो रही थी कृष्ण को, कालिया को ऐसे लग रहा था कि कोई उनको मुक्का प्रहार कर रहा है और मानो उनके शरीर से प्राण ही खींच रहा है, और बिल्कुल असहनीय होकर वहां पर कालिया ऊपर आया। कैसे ऊपर आया? सम असरत बहुत ही जल्दी तेजी से भाग कर आया वहां कालिया। जैसे कि हमारे दरवाजे पे ऐसे कुछ होगा तो हम भाग के वहां दरवाजे के पास जाएंगे कि क्या हो रहा है। और उस समय वहां पर आकर कालिया ने देखा, क्या देखा, यहां पर आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। कालिया, अब देखेंगे कि यहां सब हलचल का, उत्पात का क्या कारण है, कौन है जिस व्यक्ति ने यह साहस किया, जिसने ये मजाल की कि यहां मेरे घर में जल में आकर ऐसे उत्पात किए है, शायद वो मेरी शक्ति को नहीं जानते, कौन मूर्ख व्यक्ति है जो यहां आया है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडंतम प्रतिभयम कमलोदरांघ्रीम संदश्य मर्म सुरुषा भुजया चाद। तम प्रेक्षणीय, उस समय भगवान श्री कृष्ण को कालिया ने सामने आके देखा। बहुत आतुर था कालिया समझने के लिए कि कौन है ये व्यक्ति जो मेरे घर में आया है। तम प्रेक्षणीय, प्रईक्षणीय, प्रकृष्ट रूपेण ईक्षणीय, तो देखा कि जो व्यक्ति उनके सामने नजर आ रहा है देखने योग्य है। प्रईक्षणीय, ईक्षणीय मतलब देखना, देखने के लिए, वास्तव में देखने की चीज है ये, प्रेक्षणीय इसका मतलब है। तो सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि कृष्ण वास्तव में देखने योग्य है। तो देखने के लिए, प्रशंसा करने के लिए योग्य कौन है? केवल कृष्ण है। बड़े आकर्षक, प्रेक्षणीय का मतलब यह भी होता है बहुत आकर्षक। तो कालिया जो देख रहा है अभी, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। मानो कि सुखदेव गोस्वामी कालिया के हृदय में बैठे हैं और कालिया के आंखों से देख रहे हैं। कालिया देख रहे हैं कि प्रेक्षणीय, बहुत ही आकर्षक सुकुमार, एक बालक है, सुंदर बालक, घनावदातम, घन के समान उज्ज्वल, फ्रेश, ताजा, सुंदर लग रहा है। बादल वैसे हमेशा स्वच्छ ताजे रहते हैं, बरसात के बादल भी। आपने देखा होगा कि वैसे जब जल नीचे आता है तो प्रदूषित हो जाता है, लेकिन ऊपर बादल तो अपने आप में बिल्कुल ताजे और सुंदर, स्वच्छ, निर्मल रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही लग रहे हैं, घन अवदातम, कि बिल्कुल एक बादल की तरह, बरसात के बादल की तरह ताजे, स्वच्छ लग रहे हैं। और क्या, श्रीवत्स, उनके वक्ष स्थल पे लक्ष्मी जी की स्वर्ण रंग की रेखा, श्रीवत्स, पीत वसनम, पीतांबर धारण किया हुआ था। ये सब कालिया देख रहे हैं, अपने क्रोध भरी आंखों से देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं ये इस व्यक्ति का, जिसको ये साहस हुआ कि मेरे घर में आए। स्मित सुंदरास्यम, हल्की सी मुस्कान, बहुत सुंदर मुस्कान, मतलब इसको बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी। इसने ये नहीं देखा कि ये कालिया नाम के जहरीले सांप का घर है। ऐसे हंस रहा था मानो कोई दुनिया में चिंता ही नहीं इसको। ये बहुत आश्चर्य की बात है। अगर कोई बोल दे कि वहां उस जंगल में सांप है, वहां उस जगह में सांप है, हम सुनते नहीं, लाठी लेते हैं, 10 लोगों को लेते हैं, इतना करते हैं। हमें याद है जब हम दक्षिण भारत में भक्त के फार्म में गए थे, खेत में, तो वहां जिस कमरे में हम सो रहे थे उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कपड़ा लगा हुआ था और वहां पे एक सांप रहता था जो हमें पता नहीं था। हम सोचते थे चूहा कुड़कुड़कुड़कुड़ रात को कर रहा है, तो हम सो जाते थे। और फिर एक दिन सोए थे, 2 रात ऐसे बिताए वहां, बिल्कुल सुनसान जगह, ये कमरा अकेला था, एक छोटे से पहाड़ के ऊपर था और दूसरे भक्त दूसरी जगह रहते थे, तो अकेले उसमें थे। और अचानक फिर देखा कि सांप अपना मुंह उधर से निकाल रहा है, नीचे आ रहा है, तो हमने देखा कि अरे ये चूहा तो नहीं है, ये तो बड़ा सांप है। और 2 रात हमने सांप के साथ में बिताए हैं, तो हम बाहर आए, उसके बाद में नींद तो नहीं लगी। नींद कैसे लग सकती है जब सांप आपके सर के ऊपर है। और कई बार ऐसे होता है कि सांप फिसल के नीचे गिर भी जाते हैं, और क्योंकि सांप, इनकी बुद्धि कम होती है, द्वेषी होते हैं, तो देख ले कि अरे यहां क्या है, तो तुरंत नस देते हैं। तो वैसे ज्यादातर सब सांप ऐसे नहीं होते, थोड़े सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, लेकिन प्राय ऐसे कई सांप होते हैं जो कि किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं है। लेकिन हम तो पहचान नहीं सकते थे ये कौन से तरह का सांप है, जहरीला है नहीं है। तो हम बाहर आए और उस समय हमारे गुरुकुल के बच्चे थोड़े वहां थे, उन्होंने देखा, अरे सांप सांप सांप, हल्ला गुल्ला हो गया। सब डंडा लेकर आए दूर दूर से, उस घर में प्रवेश करने के लिए कोई तैयार नहीं, और आखिर में बेचारे सांप को पकड़ा, मार डाला उसको, और अंत में पता चला कि वो जहरीला सांप भी नहीं था। कहने का मतलब है कि कोई सांप कहीं आ जाता है, हल्ला गुल्ला सब जगह फैल जाता है, लाठी लेकर सारे 10-20 लोग आए, अरे क्या हो रहा, मानो कि किसी सेना ने आक्रमण किया है या क्या हुआ है। तो एक छोटे से सांप के होने से कितने हम सावधान होशियार हो जाते हैं, 10 बार सोचते हैं कदम आगे बढ़ाने के पहले। लेकिन यहां इस कालिया हृदय में इतने सारे हजारों सांप थे, जहरीले जहरीले सांप। कृष्ण भगवान ऐसे विहार कर रहे थे जल में हसमुख चेहरे से, मानो कि कोई चिंता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं, कोई सांप वांप कुछ नहीं यहां पर। कालिया को यह भी देखकर आश्चर्य हुआ, और फिर क्या देखा, क्रीडंतम अप्रतिभयम। अप्रतिभयम मतलब निडर होकर क्रीड़ा कर रहे हैं हसमुख चेहरे से। कालिया को और क्रोध आया, अरे यहां इतने लोग यहां आने से घबराते हैं, और ये छोटा सा सुकुमार यहां पर मेरे जल में क्रीड़ा कर रहा है, उत्पात पैदा कर रहा है, हंस रहा है, और बिल्कुल डर भी नहीं। कालिया के डर, कालिया के क्रोध की सीमा नहीं रही, और विष निकलने लगा, और यमुना जी का जल जो है और खौलने लगा, उबलने लगा, मानो कि पानी को ही आग लग गया हो। पानी को कभी आग लग सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो पानी को ही आग लग रहा है। कमल उदर अंग्रिम, और जब क्योंकि कृष्ण भगवान ऊपर थे और कालिया नीचे से आ रहा था, तो कालिया का सौभाग्य हुआ। क्या सौभाग्य हुआ, भगवान के श्री चरणों का दर्शन हुआ, और उस भाग का दर्शन जो साधारणतः नहीं होता है किसी को, क्योंकि जब श्री कृष्ण चलते थे धरती के ऊपर तो लोग केवल उनके चरणों के ऊपर का हिस्सा देखते थे, चरण कमलों के तलवों को तो नहीं देख सकते थे ना। तलवों को तब आप देख सकते हैं जब आप नीचे से देख रहे हो, कृष्ण भगवान पैर उठाए, अपने चरण उठाए, तब आप देख सकते हैं, लेकिन यह तो संभव केवल जल के भीतर है। तो कालिया को यह स्वभाव ही हुआ, कालिया ने देखा कि यह सुंदर चरण कमल, और कैसे हैं, कमल उदर, कमल के भीतर का हिस्सा जो होता है, अंदर का हिस्सा जो अरुणी होता है, मतलब सूर्योदय के समय जो रंग होता है सूरज का, अरुणी लाल रंग का, हल्के से लाल रंग का, वैसा उन्होंने देखा, कालिया ने देखा वो रंग, उस रंग के चरणों के तलवे हैं, बड़े आकर्षित। तो इतना सुंदर दृश्य काली ने देखा, समझ गए कि अति सुंदर एक बालक यहां आया है। लेकिन इतने सुंदर दृश्य देखने के बाद भी कालिया का हृदय पिघल नहीं गया। मन ही मन में सोच रहा था इतना सुंदर, लेकिन क्रोध और ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि कालिया ने क्या सोचा, संदश्य मनमसु रुषा, रुषा मतलब बड़े रोष से, क्रोध से, संदश्य डस दिया, काट दिया, कहां पर, मर्मसु, मर्मसु मतलब कृष्ण भगवान के वक्षस्थल में। असुरों की यह प्रवृत्ति होती है कि किसी सुंदर या अच्छे वस्तु को देखने से उनको ईर्ष्या होती है, नफरत होती है। हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कितने सुंदर सुंदर मंदिर वगैरह थे, लेकिन कितने सारे ऐसे आक्रमण करने के आक्रमण के हेतु सेना आए, सुंदर सुंदर मंदिरों को तोड़ डाला। ये असुरी वृत्ति होती है तमोगुण में, सुंदर चीजें जो है उनको तोड़ डालना। अभी भी हम सुनते हैं अफगानिस्तान में उन्होंने जो मूर्तियां बनाई थी बुद्ध देव की, उनको बड़े बड़े बम विस्फोट करके उनको तोड़ डाला। जो अच्छे अच्छे चीजें बनाए हैं उनको तोड़ डालना, ये असुर का काम होता है। तो असुर लोग कभी भी किसी अच्छी सुंदर वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते, केवल तोड़ फोड़ कर सकते हैं, जो तमगुण का कार्य है। एक भक्त बताया करते थे, जो बम्बई आए थे मंदिर में, प्रभुपाद के शिष्य हैं, कि जब वो पुस्तक वितरण के लिए जाते थे तो उस समय बचाने के लिए और सामने वाले व्यक्ति को पहचानने के लिए वो एक उपाय निकालते थे। वो ऐसे भागवत या किसी ग्रंथ को लेते थे जिसमें कृष्ण भगवान के सुंदर सुंदर चित्र हैं, और उनसे बात करते थे। बात करने के पहले ही उनके आंखों के सामने कृष्ण की तस्वीर रख देते थे। अभी पाश्चात्य देशों में उन्होंने कभी कृष्ण क्या है, राम क्या है, कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है। तो कृष्ण को देखते थे, सुंदर तस्वीर कृष्ण की, कई लोग आकर्षित हो जाते, अच्छा बहुत सुंदर है, क्या है, कौन सब किताब है, आप लोग कौन हो, आपका संदेश क्या है, आपका धर्म क्या है। लेकिन कई लोग देखते थे, अरे तुरंत किताब को बंद कर देते थे और मुंह उस तरफ कर देते थे। तो भक्त बता रहे थे कि इसे तुरंत पता चल जाता था कौन असुर है कौन नहीं। असुर कृष्ण को देखता था, देखकर ही वो मुंह हटा देता था, आंखें हटा देता था, किताब बंद कर लेता था। लेकिन जो जिनके अंदर थोड़ी बहुत सुकृति थी, भले पापी भी क्यों ना हो, भले चारों नियम को तोड़ रहे हो, लेकिन फिर भी देखकर थोड़ी बहुत आकर्षण हो जाता था, सुंदर है ये, कौन है, जिज्ञासा हो जाती थी। तो काली ने देखा, समझा कि ये बालक जो आया है अति सुकुमार सुंदर है, लेकिन फिर भी सौंदर्य की प्रशंसा करने के बजाय क्या कर दिया, कृष्ण भगवान के वक्षस्थल में डस दिया, काट दिया, और काट कर बड़े क्रोध से क्या किया, भुजया चछाद, अपने भुजाओं में आलिंगन कर लिया कृष्ण को और पकड़ के रखा बड़े तेजी से। और कालिया सोचने लगा कि इस व्यक्ति की ये मजाल, ये कौन हो सकता है, ये व्यक्ति जिसने इतना हल्ला कर दिया है, ये कहां से आया है। और इस तरह से कालिया सोच में पड़ गया। और आगे फिर जब कृष्ण भगवान को ऐसे पकड़ लिया कालिया ने, तो वहां पर क्या हुआ, या आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। वैसे कल हम चर्चा कर चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण की काले दमन लीला करने के लिए चार कारण थे। आपको याद है कौन से कारण थे, भगवान ने काले दमन की लीला क्यों की? पहला, यमुना जी को शुद्ध करने के लिए। दूसरा, काली के ऊपर कृपा करने के लिए। तीसरा, ब्रज के लोगों को आनंद देने के लिए, और आनंद नहीं, आनंद तो है लेकिन फिर भी उनकी सुविधा के लिए, क्योंकि जल दूषित था, ब्रजवासी और गाय वहां आकर जलपान नहीं कर सकते थे, तो ये जगह उनको शुद्ध करना था ताकि ये लोग आके फिर से यहां विहार करें, गायों को चराने आ जाएं, उनके पिकनिक वगैरह करें ब्रजवासियों के लिए। और चौथी बात, जो बाहर के लोग जो तीर्थ यात्रा में आते थे या जमुना जी के पास में आते थे, उनकी सुविधा के लिए वो लीला करना चाहते थे। लेकिन और दो भी कारण थे। काली ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपने भुजाओं में पकड़ लिया सख्ती से, तो भगवान वैसे ही रहे और ऐसे लग रहा था कि मानो अभी कृष्ण किसी भी हालत में बच नहीं सकेंगे, उनकी मृत्यु होने वाली है। तो ऐसे एक मृत्यु की एक झलक दिखाने लगे ब्रजवासियों को। तो ऐसे क्यों किया भगवान श्री कृष्ण ने? क्योंकि वो ब्रजवासियों के तीव्र और गाढ़े प्रेम को देखना चाहते थे और सारे जगत को दिखाना चाहते थे कि मेरे प्रति कितना आकर्षण इन ब्रजवासियों का है, किस हद तक ये मेरे ऊपर निर्भर हैं, ये मेरे बिना जी नहीं सकते हैं। और एक कारण था, भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने के इच्छुक थे और चाहते थे कि ऐसे जगह नृत्य करें जिसे लोग याद रखेंगे। आखिर कृष्ण है नटवर, नटों में से या नाट्य नृत्य करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान की इच्छा हुई कि मुझे नृत्य करना है थोड़ा, तो भगवान ने लीला कर ली, कालिया दमन की लीला। वैसे हमारे अंदर जो भी इच्छाएं हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि वो कृष्ण भगवान के अंदर है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर भी युद्ध करने की इच्छा बीच बीच में हो जाती है, वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, इसलिए रावण कुंभकर्ण आए, शिशुपाल दंतवक्र आए, अपने ही साथी जय विजय को उन्होंने भेज दिया कि जाओ असुर की भूमिका निभाओ और मेरे साथ युद्ध करो और युद्ध का आनंद मुझे दो। इस प्रकार से युद्ध करने की इच्छा भगवान में है, इसलिए हमारे अंदर भी है। और उसी प्रकार से भगवान के अंदर नृत्य करने की इच्छा भी है। भगवान भी एक व्यक्ति है, उनके अंदर भी नाना प्रकार से रमण करने की इच्छा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जब चाहा कि मैं अब नृत्य करूंगा, तो उन्होंने ये कालिया दमन लीला की। तो आगे जब कृष्ण की ये दशा थी कालिया के भुजाओं में, तो आगे चल के क्या हुआ यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तम नाग भोग परिवीतम दृष्ट चेष्टम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपभृशार्ता कृष्णे पितात्म सुहृदर्थ कलत्र काम दुखानुशोक भय मूढ़ दियो निपेतु। प्रिय सखा पशुप, उस समय वहां ग्वाल बाल और गौवें तो उपस्थित थे यमुना जी के तट पर, लेकिन कहीं और दूरी पर भी और कहीं पशुप या जो गोपगण थे वहां पर पास में, उन्होंने देखा कि अरे क्या हो गया, कालिया बाहर आ गया और कृष्ण वहां पे है। तुरंत सब दौड़ के आए। तो जब कृष्ण कालिया के भुजाओं में थे, तो उस समय यमुना जी के तट पर ग्वाल बाल थे, गाय थे और ये थोड़े बहुत जो गोपगण इधर उधर पास में थे, अपने को गोवों चरा रहे थे अपने, वहां पर वो सब दौड़ के आए। तो उन्होंने क्या देखा? तम नाग भोग परिवीतम अदृष्ट चेष्टम, कि कालिया के नाग भोग परिवीतम, नाग कालिया ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया है और कृष्ण किस अवस्था में है? अदृष्ट चेष्टम, मतलब हिल नहीं सक रहे हैं, गतिहीन हो गए हैं, यूं ही बस बंधे हुए, हाथ हिल नहीं रहे, पैर हिल नहीं रहे, बंधे हुए हैं कालिया की भुजाओं में। ये जब देखा आलोक्य, तो उनको क्या हुआ? भृश आर्तः, बहुत दुख हो गया उनको। क्यों दुख हुआ? हमें तो दुख तब होता है जब किसी व्यक्ति से हमारा प्रेम है, अगर प्रेम नहीं होता तो इतना दुख नहीं होता। हम अखबार में पढ़ते हैं कितने लोगों की हत्या होती है कश्मीर में, इधर उधर दुनिया भर में लोगों की हत्या होती है, लेकिन दुख नहीं होता। हमारे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई या उनको कोई कठिनाई हुई तो हमें बहुत दुख होता है। जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ज्यादा दुख होगा। तो ब्रजवासी ये भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते थे। कृष्ण अर्पित आत्मा सुहृद अर्थ कलात्र कामा, केवल प्रेम नहीं करते थे ब्रजवासी कृष्ण से, अर्पित उन्होंने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था श्री कृष्ण को। क्या क्या अर्पित किया था? आत्मा, स्वयं को अर्पण कर दिया था। और किस चीज को? सुहृद अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अर्थ अपना धन, सोना चांदी जो भी कुछ है सब कुछ कृष्ण को दे दिया था। कलत्र अपने पत्नियों को कृष्ण के शरण में लगा दिया था। कामा अपनी सारी इच्छाएं सब कुछ उन्होंने कृष्ण के हवाले कर दिया था। कृष्ण ही उनके सब कुछ थे। इस प्रकार से कृष्ण को जब ऐसी अवस्था में उन्होंने देखा, दुखानुशोक भय मूढ़ धियो, तो स्वाभाविक है कि बहुत ही दुख हुआ होगा उनको। दुख हुआ, शोक हुआ, भय हुआ, और वहां पे जो ग्वाल बाल थे दुख के मारे स्तब्ध रह गए, और उनके कपाल को अपने हाथ के तलवे में लगाकर बोलने लगे, हाय हाय, ये कितना दर्दनायक है, अब क्या होगा, हम तो रह भी नहीं सकेंगे, जी नहीं पाएंगे। उधर जब गोपगढ़ वहां से आए, उन्होंने भी देखा कि इस प्रकार से कृष्ण भगवान कालियां के भुजाओं में हैं। उनको ऐसे लगा कि मानो वो विष के कोई सागर में प्रवेश कर चुके हैं। सारा जगत उनको मानो शून्य नजर आया, और ग्वाल बालों को एक ही क्षण में, उसी समय अष्ट सात्विक विकार के अनुभव हुआ। अष्ट सात्विक विकार मतलब जब शुद्ध भक्ति में ये अलग अलग भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं, आठ प्रकार के लक्षण, जैसे कि शरीर में कंपन, कंठ गदगद होना, रोमांच होना, आंखों से अश्रुधारा होना इत्यादि। शुद्ध भक्ति के स्तर में ऐसे सारे लक्षण प्रकट होते हैं जिसको अष्ट सात्विक विकार कहते हैं, शरीर में विकार होने लगते हैं इस प्रकार के। तो एक ही समय इस सारे आठों के आठ लक्षण प्रकट होने लगे। वैसे भक्तों में क्या होता है, शुद्ध भक्तों में कभी कभी केवल अश्रुधारा, कभी एक दो तीन लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन यहां आठों के आठ प्रकट होने लगे। और इस प्रकार से इनकी पीड़ित अवस्था को देखकर देवी देवता जो भी कृष्ण लीला को देखने आए थे, उनको भी बड़ा दुख हुआ, और उनको लगा कि मानो किसी ने उनके हृदय में अग्नि के तीर छोड़ दिए हैं, और वो भी हाय हाय कहने लगे, शोक मच गया सब जगह। और इस प्रकार से निपेतु, वो गिर पड़े नीचे, बेहोश हो गए, इतने दुखी हो गए। और आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि केवल मनुष्य और देवी देवता ही दुखी नहीं हुए, लेकिन वहां के सारे प्राणी भी जो उपस्थित थे वो भी दुखी हो पड़े। गावो वृषा वत्सत्तर्यः क्रंडमाणासु दुखिताः कृष्णे न्यस्ते क्षणा भीता रुदन्त्य इव तष्ठिरे। गाय, बैल, वत्स, क्रंदमाणः रोने लगे, सुदुखिता अति दुख के मारे। कृष्ण न्यस्त इक्षण, कृष्ण को देखते रहे, अपने आंख कृष्ण से उठा नहीं सके। रुदन्त इव तष्ठिरे, और इस प्रकार से स्तब्ध होकर, बिल्कुल गतिहीन होकर, एक ही अवस्था में अपने नेत्रों को उन्होंने कृष्ण के ऊपर केंद्रित कर दिया। और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नाना प्रकार के अशुभ लक्षण सब जगह ब्रज में प्रकट होने लगे। अथ व्रजे महोत्पात त्रिविधा ही अति दारुण उत्पेतु भुवि दिवि आत्मनि आसन भय संशिन। अथ व्रजे मह उत्पात, उसके बाद ब्रज में उत्पात होने लगे सब जगह। क्या क्या होने लगे? त्रिविधा, तीन प्रकार के अति दारुण, बहुत ही भयानक ऐसे लक्षण दिखाई पड़ने लगे सारे ब्रज में। कैसे कैसे? भुवि, पृथ्वी के ऊपर, दिवी, आकाश में, आत्मा नहीं, लोगों के शरीर में। तो ये सब अशुभ लक्षण, कौन से प्रकट प्रकार के अशुभ लक्षण? भूमि के ऊपर कंपन होने लगा, अर्थात भूकंप, और फिर सब जगह हवा चीखते हुए, यूं 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 आवाज करते हुए अचानक तूफान की हवा चलने लगी। और साथ में जो जंगल में श्रीगाल, गीदड़ जो वहां थे, वो भी सूरज की ओर देखकर चीखने लगे। ये सब अशुभ लक्षण है। और उसके बाद में आकाश में ऐसे लग रहा था कि सूरज की रोशनी ही कम हो गई है और सब जगह धुआं और अंधकार, मानो कि एक धुंध सा छा गया है। और लोगों के शरीर में जो पुरुष थे उनके बाएं तरफ शरीर के, उनके हाथों में, जंघाओं में और उनके आंखों में कंपन होने लगी, और महिलाओं के दाहिने भाग में। बताया जाता है कि जब पुरुषों के बाएं भाग और स्त्रियों का दाहिना भाग में कंपन होने लगता है तो ये एक भविष्यवाणी हो रही है कि कुछ अशुभ होने वाला है। तो सारे ब्रजवासियों ने देखा कि हमारे बाएं तरफ कंपन हो रहा है शरीर, हाथ भी हाथों में कंपन हो रही है, कुछ तो होना है। तो महिलाओं के लिए जब बाएं तरफ होता है तो इसका मतलब कोई अच्छी घटना होने वाली है, दाहिने तरफ हुआ तो कुछ अशुभ बात होने वाली है। पुरुषों के लिए बाएं तरफ हुआ तो कुछ अशुभ बात होने वाली है, और दाहिने भाग का कंपन होने लगा तो कुछ शुभ बात होने वाली है। तो यह लक्षणों की विद्या है, यह भी एक विज्ञान है जिसको आज हम भूल गए हैं, लेकिन ब्रजवासी इन सारे लक्षणों को अच्छी तरह से जानते थे। तान आलक्ष्य भयोद्विग्ना, तो वहां पे गोप नंद पुरोगमाह, सारे नंद और अन्य गोपगणों ने ये सारे लक्षण देखे, तान आलक्ष्य भय से उद्विग्न हो गए और इस प्रकार से सोचने लगे, विना रामेण गह कृष्णम ज्ञात्वा चारयितुं गतम। अरे रे रे, कृष्ण राम के बिना, बलराम के बिना कृष्ण जंगल में गए हैं, न जाने क्या हुआ होगा, सब जगह यहां पे इतने भीषण भयानक लक्षण हमें दिखाई पड़ रहे हैं, अब क्या हुआ होगा कृष्ण का। फिर उनमें से जो कई विद्वान गोपगण थे वो बोलने लगे कि अरे देखो, हमने कितनी लापरवाही की, हमने कृष्ण को जो कि इतने कोमल हैं, इतने छोटे हैं, मासूम हैं, उनको हमने अकेले भेज दिया जंगल में। वैसे तो उनके साथ में उनके बड़े बुद्धिमान और शक्तिमान भाई बलराम जाते हैं, लेकिन आज बलराम नहीं गए और न जाने क्या हुआ होगा, वहां पे इतने सारे असुर हैं जंगल में, अब क्या हुआ होगा, कृष्ण तो हमारे हृदय के प्रिय हैं और कृष्ण के बिना तो हम रह नहीं सकते, तो इसलिए आइए हम शिव जी की उपासना करते हैं। शिव 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 सब कहने लगे, क्योंकि शिव का उच्चारण कहने से सब कल्याण सब जगह हो सकता है, शिव का अर्थ होता है कल्याण, मंगल। तो कहने लगे, अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो अशुभ लक्षणों का प्रतिकार करने के लिए हम शिव जी का नाम लेते हैं। सभी लोग शिव 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 कहने लगे। और फिर तैर दुर्निमित्त निधनम मत्वा प्राप्तम अतत विदह, तो इन सारे अशुभ लक्षणों को देखकर उनको कृष्ण के बारे में डर जागृत हुआ हृदय में। वैसे अतत विदह, कृष्ण के सच्चे शक्ति को, ऐश्वर्य को वो नहीं जानते थे, सोचते थे कि कृष्ण हमारा ही प्रिय बालक है, क्योंकि उनके आंखों के सामने योग माया का पर्दा था और इसलिए वो केवल कृष्ण के निकट के माधुर्य को जानते थे, कृष्ण के वास्तव में ऐश्वर्य को नहीं जानते थे। इसलिए हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतित रहते थे, कहीं नुकसान नहीं हो जाए, कहीं हानि नहीं पहुंचे। इस प्रकार से भगवान की योग माया शक्ति ने उनके हृदय में ऐसी चिंता पैदा कर दी। तत्प्राणस्तन मनस्कास्ते दुख शोक भयातुराह, और उसके बाद में उनके मन में बड़ी चिंता होने लगी, घबराहट होने लगी, और फिर सब क्या करने लगे, एक के बाद एक सब निकल पड़े। निर्जग मूर गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसाह, कृष्ण के दर्शन के लिए लालसित हुए, हमें कृष्ण देखना है, क्या हुआ, कृष्ण कहां होंगे, क्या कहां होंगे। ब्रज में जो भी छोटी से छोटी घटना भी होती थी, पहले विचार मन में कृष्ण का आता था। जैसे कि घर में अगर कोई बच्चा है, बच्चा कोई दूसरे कमरे में खेल रहा हो और अचानक किसी दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में ही कोई डब्बा गिरने की आवाज आ जाए या कोई ऐसे लक्षण आ जाए, तो माता पिता को क्या लगता है, अरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं, तुरंत मन वहीं पर जाता है। इसी प्रकार से ब्रज में कुछ भी हो जाता, तूफान आ जाता, हवा आ जाती, बारिश आ जाती, कुछ भी हो जाता, कृष्ण कहां है, कृष्ण तो ठीक है ना, पहली बात यही सोचते थे। ये था प्रेम ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति। तो इस प्रकार से ब्रजवासी सारे निकल पड़े। कौन कौन निकल पड़े? केवल पुरुष निकल पड़े, केवल स्त्री निकल पड़े? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, आबाला वृद्ध वनिता सर्वे अंग पशु वृत्तयः। आबाला, छोटे छोटे बच्चे, एक साल के बच्चे भी गोदी में, हम भी जाना चाहते हैं कृष्ण को देखने के लिए। वो भी जिद करने लगे, हम भी आएंगे साथ में। छोटे छोटे बच्चे भी आने लगे गोदी में, बोलने के, अरे तुम ठहरो, अभी हमें समय नहीं, हमें जल्दी जल्दी जाना है, तुम्हें उठाकर कौन ले जाएगा। रोने लगे, नहीं नहीं हमें भी आना है। और वृद्ध जो चल भी नहीं सकते थे, ब्रजवासी उनको रोक रहे थे, रहो ठहरो बाबा, आप कहां जाओगे? नहीं नहीं हमें आना है, जाना है, कृष्ण कहा है। तो अपनी लाठी लेकर हड़बड़ाते हुए वो भी चल पड़े। वनिता, जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी चल पड़े। साथ साथ में सर्वे अंग पशु वृत्तयः, सारे गाय बैल सब चलने लगे। वहां जो भी बचे हुए थे ब्रज में वो भी चले। और उनकी दशा कैसे हुई? उनकी दशा ऐसे हुई जैसे कि एक गाय जो हमेशा अपने निस्सहाय बछड़े के बारे में सोचती है, वैसे ब्रजवासियों की दशा हुई। इस प्रकार से वहां बलराम जी खड़े हुए थे। अब बलराम जी ने क्या सोचा? बलराम जी किस प्रकार से इस घटना को देख रहे थे, यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। ताम तथा कातरान वीक्ष्य भगवान माधवो बलह प्रहस्य किंचिन्नो वाच प्रभावज्ञो नुजस्य सह। ताम्स तथा कातरन वीक्ष्य, बलराम जी ने देखा, कातरन ये लोग बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं। किसने देखा? भगवान माधवो बलह, बलाह मतलब बलराम, जो कि भगवान है। लेकिन यहां पर बलराम जी को माधव कहा गया है, वैसे कृष्ण को माधव कहा जाता है। हमने देखा कि मां धव शब्द का अर्थ यह भी होता है, मां मतलब लक्ष्मी और धव मतलब पति, लक्ष्मीपति माधव। लेकिन मां धव का और एक अर्थ भी यह होता है जो सारे दिव्य ज्ञान के या योग बल के स्वामी है, इसलिए बलराम को भी माधव कहा गया। तो माधव श्री बलराम जी ने देखा कि सभी लोग इतने पीड़ित अवस्था में है, सभी लोग रो रहे हैं, हाहाकार मच गया है, लेकिन बलराम जी दुखी नहीं हुए। बलराम जी क्या कर रहे थे? प्रहस्य, हसमुख चेहरा था बलराम का। क्यों हंस रहे थे बलराम? क्योंकि प्रभवज्ञा, अपने छोटे भाई के प्रभवज्ञा अनुजस्य सह, अनुज मतलब छोटा भाई जिसका जन्म बाद में होता है, तो वो अनुज के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते थे कि कृष्ण की क्या शक्ति है, कृष्ण कौन है, कृष्ण का क्या बल है, उसका क्या सामर्थ्य है, बलराम अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए बलराम को कोई चिंता नहीं हुई। योग माया बलराम जी के आंखों को ढक नहीं पाई, तो बलराम अच्छी तरह से जानते थे। वो एक कोने में खड़े होकर हंस रहे थे, तमाशा देख रहे, क्या हो रहा है, ये सब रोना धोना चल रहा है, हलचल हो रहा है। और दूसरा कारण जिससे कि बलराम जी हंस रहे थे वो ये है कि बलराम सोच रहे थे, मैं अनंत शेष का रूप धारण करता हूं, लेकिन कृष्ण भगवान मेरे अनंत शेष रूप के साथ में कभी ऐसे लीला नहीं करते हैं, लेकिन आज एक साधारण भौतिक सांप जिसका नाम है कालिया, उसके साथ में लीला करने गया है मेरा छोटा भाई कृष्ण। तो इसके बारे में सोचकर कृष्ण भगवान को हंसी आ गई, बलराम जी को हंसी आ गई, और हंसकर वहां पर देख रहे थे मजाक क्या हो रहा है। और इसलिए किंचिन न उवाच, एक शब्द भी नहीं बोले बलराम जी, चुपचाप वहां पे खड़े हैं, हाथ जोड़ खड़े हैं, क्या हो रहा है देखते हैं। हाहाकार मच गया ब्रज में, त्राही त्राही मच गई, सभी लोग बोल रहे कृष्ण है कृष्ण, कहां गए कहां गए कृष्ण। और बलराम जी खड़े होकर हंस रहे हैं, अपने मस्ती में थे भगवान जी। और उसके बाद में सारे जो ब्रज के निवासी हैं भागते गए अपने अपने गति में, बूढ़े बच्चे अपने अपने गति में, जो जैसे चल सके वैसे चलने लगे, भागने लगे। और कैसे पहचान पाए कि कृष्ण कहां गए हैं? भगवत लक्षणैर, पदय ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह जो वहां ब्रज के रज में थे उनको पहचान पाए। और जब उन्होंने पहचान लिया तो उसी मार्ग पर वो चले गए। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में कौन से चिन्ह थे। ते तत्र तत्र वहां वहां क्या था? अब्ज, अब्ज मतलब कमल। यवान, यवान मतलब जौ, जौ जानते हैं ना, बार्ली। यो अशनी, अशनी मतलब वज्र। ध्वज, ध्वज का चिन्ह भी था। इस प्रकार से ये सारे चिन्हों से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, उनकी निशानी ब्रज के रज में तत्र तत्र जगह जगह पे थी। तो ब्रजवासियों ने क्या किया, केवल उसके पीछे पीछे गए और भगवान के चरण कमलों के साथ साथ में मार्गे गावम अन्य पदांतरांतरे, अन्य भी पद चिन्ह वहां पर दिखाई पड़ रहे थे। तो आगे चल के जब वो गए तो सीधे वहां जाकर कालिया रथ में पहुंच गए। प्रश्न ये आता है कि जंगल में इतने लोग आते थे, जाते थे, गौए थे, अन्य ग्वालबाल थे, पशु पक्षी इतने थे, तो ये कैसा संभव है कि कृष्ण के पद चिन्ह रेती में मिट नहीं गए? हम चलते हैं मिट्टी में, हमारे पद चिन्ह लग जाते हैं, लेकिन दो मिनट बाद कोई और चलता है, फिर वो मिट जाते हैं पद चिन्ह, लेकिन कृष्ण भगवान के पद चिन्ह मिटे नहीं कैसे? तो आचार्य समझाते हैं कि सारे पशु पक्षी प्राणी ब्रजवासी कृष्ण के पद चिन्हों को पहचानते थे और कोई उसको मिटाना नहीं चाहता था। तो जब भी प्राणी आते थे वहां पर देखते थे, अरे ये तो कृष्ण का पद चिन्ह है, थोड़े हटकर से जाते थे, दूर होकर चले जाते थे, कभी कृष्ण भगवान के पद चिन्हों के ऊपर चल के नहीं जाते थे। इस प्रकार से भगवान के पद चिन्हों को देखकर वहां पर आगे चलते गए और चलकर आगे कालिया के पास में पहुंचे, यमुना जी के तट पर। यमुना जी के तट पर पहुंचकर वहां क्या हुआ, उन्होंने ब्रजवासियों में कृष्ण भगवान के प्रति अपना प्रेम कैसे व्यक्त किया और आगे श्री कृष्ण ने कालिया के साथ में कैसे लीला किया, वो हम कल सुबह सुनेंगे।
कल कृष्णा बुक में पढ़ रहा सांबा और दुर्योधन के पुत्री के विवाद बारे में चर्चा करते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि बलराम जी क्रोध